बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रम अनुसार अध्ययन किया करते हैं। जी हाँ, हमारा यही उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सत्य को पहचाने और इस संसार के सृष्टिकर्ता तथा उसके द्वारा किए गए महान कार्य एवं उसके प्रेम को समझें। श्रोताओं, इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से संत पौलुस द्वारा लिखी गई कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो लीजिए, इससे पूर्व कि आप अपना ध्यान आज के बाइबल अध्ययन की ओर केंद्रित करें, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर की निकटता में रह करके आनंदित हैं और फिर से एक बार आज परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मैं आपको बता दूँ कि हम सब इन दिनों कुरिन्थियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं, जो बाइबल के नए नियम के पुस्तक की एक पत्री है। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि पौलुस प्रभु भोज के बारे में बातें कर रहे थे और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 12 से वरदानों के विषय में देखेंगे। प्रिय मित्र, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज हम एक नए विषय में आगे बढ़ेंगे, वरदानों की ईश्वरीय देन। जैसा हमने देखा है, कुरिन्थियों का पहला भाग सांसारिकता का था और अब अध्याय 12 एक नया भाग आरंभ करता है जो आत्मिकता से संबंधित है, जिसमें पहले 3 अध्याय आत्मिक वरदानों के विषय में चर्चा करते हैं। अध्याय 12 वरदानों की ईश्वरीय देन, अध्याय 13 वरदानों की क्षमता और अध्याय 14 वरदानों का अभ्यास बताता है। अनेकता में एकता लाने के लिए वरदान दिए जाते हैं। तो आइए हम देखें, पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय उसका एक पद लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। मेरे मित्रों, यूनानी भाषा के नए नियम में वरदान शब्द नहीं है। इसके यहाँ लिखे जाने का उद्देश्य है कि समझने में आसानी, परंतु स्पष्ट कहूँ तो मेरे विचार में वरदान शब्द जोड़ने से भी स्पष्टता नहीं आती है, और सच तो यह है कि इससे उलझन ही बढ़ी है। मेरे प्रियो, यूनानी भाषा में लिखा है आत्मिकताएं, जो सांसारिकताएं के विपरीत है, अतः आवश्यक नहीं कि वरदान शब्द जोड़ा जाए। अध्याय 3 में पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया में विभाजन को संबोधित कर रहा था। उसने पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय के एक पद में लिखा, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। यह पहला भाग सांसारिकता के बारे में था, क्योंकि उनके प्रश्न सांसारिकता से संबंधित थे, वे बातें जिनमें सांसारिक लोग रुचि रखते हैं। यह सांसारिकता उनके विभाजन, अलग अलग अंगों के पथ निष्ठा, व्यविचार, न्यायालय में मुकदमेबाजी, यौन समस्याएं, स्त्रियों की वेशभूषा और पुरुषों के लंबे बाल, प्रेम भोज, पेटुपन और नशा तथा प्रभु भोज, ये सब सांसारिकता है जो आज की कलीसिया में भी देखी जाती है। सांसारिकता का यह भाग सुधार लाने वाला था। मेरे मित्रों, अब हम आत्मिकता के विषय पौलुस के विचार को देखेंगे। यह निर्णयकारी है और पौलुस अब विषय में परिवर्तन लाते हुए प्रसन्न है। मेरे विचार में अध्याय 12 में आकर उसने राहत की सांस ली होगी। वह अन्य विषयों पर चर्चा कर सकता था, परंतु आत्मिकताओं को उसने अधिक उचित चर्चा का विषय समझा है। आज की कलीसिया को भी पुराने चर्चाओं को छोड़ करके या उसे बदलने की जरूरत है। अति व्यवहार कुशल मसीही शिक्षक कहते हैं कि हमें अपने युवा वर्ग से यौनाचार पर चर्चा करना चाहिए। मेरे मित्रों, उचित होगा कि हम उनसे आत्मिकता पर चर्चा करें। कलीसिया में अनेक ऐसे कार्यक्रम हैं जो युवाओं को बाइबल के निकट कहीं नहीं लाते। उनकी सभाएं वर्तमान प्रचलित सांसारिकताओं के विषय पर आयोजित की जाती है। यह सब सांसारिकता का चिन्ह है, संसार की बातें हैं। इस भाग में पौलुस 3 विषयों पर प्रबोधन करेगा, एकता की आत्मा, प्रेम की व्यवस्था, पुनरुत्थान में विश्वासी की विजय। आत्मा के वरदान आत्मिकताओं में से एक आत्मिकता है। आइए हम आगे देखें, तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए चलते थे वैसे चलते थे। मेरे मित्रों, मूर्तियां बोल नहीं सकती थी, वे गूंगी होती हैं। आपको स्मरण होगा कि पौलुस ने पहले कहा था कि मूर्तियां कोई वस्तु नहीं है। यही कारण है कि मूर्तियों को चढ़ाया हुआ मांस दूषित नहीं होता है। मूर्तियां कोई वस्तु नहीं है। दुर्भाग्य से सब मनुष्य इस बात को नहीं समझते हैं। भजन संहिता 115 उसके 5 पद में भजनकार कहता है, उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनकी आंख तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती। यही बात हबकूक भी कहता है 2 अध्याय के 18 पद में, खुदी हुई मूरत में क्या लाभ, देखकर बनाने वाले ने उसे खोदा है, फिर झूठ सिखाने वाली और ढली हुई मूरत में क्या लाभ, देखकर ढालने वाले ने उस पर इतना भरोसा रखा कि न बोलने वाली निकम्मी मूरत बनाए। मेरे प्रियो, यहाँ पर रोचक बात तो यह है कि पौलुस उन वरदानों का उल्लेख करने जा रहा है जो जीवित परमेश्वर विश्वासियों को देता है। अतः उन्हें पहले तो वह बताना चाहता है कि विश्वास में आने से पूर्व वे इन मुख मूर्तियों के उपासक थे जो बोल और देख नहीं सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय के 3 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। मेरे मित्र, एक महान तथ्य है मसीही जीवन की परिशुद्ध सच्चाई, मसीह यीशु की प्रभुता। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। मित्रों, आप मसीह यीशु को परमेश्वर की आत्मा की तुलना में कम नहीं दिखा सकते, यह नहीं हो सकता। न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। निसंदेह हम मसीह यीशु को प्रभु तो कह सकते हैं, परंतु स्मरण रखें कि प्रभु यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 21 से 23 पद में कहा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। मित्रों, ऐसा क्यों? क्योंकि उनके काम तो सत ही थे, परंतु प्रभु यीशु उनका प्रभु नहीं था। प्रभु यीशु को प्रभु बनाना आत्मा का अंगीकार है। मसीह विश्वासी का केंद्रीय सत्य क्या है? अनेक जन कहते हैं कि मसीह का क्रूस है, परंतु मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। यद्यपि हम उधार पाने के लिए क्रूस की छांव या निकट में आते हैं, परंतु हम वहीं नहीं रुक जाते। हम जीवित मसीह के साथ एक हो जाते हैं, और यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है। मेरे मित्रों, देखिए पेंतिकोस के दिन शमौन पत्रस ने अपने उपदेश में और उसके अंत में क्या कहा, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 36 पद में, अब इसराइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया, और मसीह भी, वह प्रभु है, वह परम प्रधान है, उसकी प्रभुता ही मसीही जीवन में प्रमुख है। मेरे मित्रों, पवित्र आत्मा भावनात्मक की आज्ञाकारिता और यीशु की अधीनता की आज्ञा देता है। एक सच्ची कलीसिया वह है जो पवित्र आत्मा द्वारा व्यक्त सत्य को केंद्र में रखकर एकत्र हो। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में यीशु की प्रभुता को व्यक्त करती है। यीशु के उस महान प्रश्न को स्मरण करें मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 15 पद में, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? यीशु आज भी वही प्रश्न पूछ रहा है कि आप किसी भी सेवानिवृत्ति में हो, किसी भी रंग के हो, जीवन में किसी भी स्तर पर हो, आप जो भी हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, यीशु आपसे पूछता है कि तुम मुझे क्या कहते हो? क्या आपने उसे व्यक्तिगत रूप से जाना है? उसने शिष्यों से पूछा था और पत्रस ने उत्तर दिया 16 अध्याय के 16 पद में, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जी हाँ, वह अभिषिक्त जन है, वह राजा है, वह प्रभु है। इस पत्री में हम यह देख चुके हैं, मसीह यीशु के स्वामित्व से रहित कोई भी मसीह की कलीसिया की सेवा के योग्य नहीं है, यही हम देख चुके हैं। अब पौलुस इस पर फिर से बल देकर के कहता है, आज पवित्र आत्मा का एकता का कार्य यह है कि विश्वासियों पर मसीह यीशु की प्रभुता प्रकट करे। इस एकता में वरदानों की विविधता है। आइए हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों के पत्री 12 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। मित्रों, ध्यान दीजिए कि वरदानों को बांटा गया है। एकता बनाए रखने के लिए वह विभिन्न विश्वासियों को विभिन्न वरदान देता है। कुछ लोग इसे अन्य भाषा बोलना समझकर कैरिश्मेटिक पंथ बनाए हुए हैं, और यह उनकी अज्ञान का प्रदर्शन है। यह यूनानी शब्द कारिश्मा उन सब वरदानों के संदर्भ में है जो पवित्र आत्मा कलीसिया में विश्वासियों को देता है। हम आगे पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय के 5 पद में, और सेवा भी कई प्रकार की हैं परंतु प्रभु एक ही है। ध्यान दें, इसका अर्थ यह है कि सेवा भी विविधता है परंतु प्रभु एक ही है, अर्थात मसीह यीशु। आपके पास कोई सा भी वरदान हो, इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। प्रभु यीशु उस वरदान को काम में लेता है और वह अपनी महिमा के निमित्त इसे काम में लेता है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय के 6 पद में आगे पढ़ते हैं, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। मेरे प्रियो, कार्य भी अनेक प्रकार के हैं, अर्थात प्रभाव में विविध हैं, परंतु उन सब के पीछे काम करने वाला परमेश्वर एक ही है और वही विश्वासियों में काम करता है। यह हमें चिताता है कि परमेश्वर एक ही है जो त्रिएक परमेश्वर है। त्रिएकत्व का काम एक ही है। इसका मतलब यह हुआ कि इन तीनों में कोई भी भेद नहीं है, अर्थात एकता है, एकता में विविधता। पवित्र आत्मा वरदान देता है, प्रभु यीशु वरदानों का उपयोग करता है, वे उसके निर्देशन के अधीन है। पिता परमेश्वर सामर्थ प्रदान करता है और वरदानों को क्रियाशील करता है। यह सब एक ही उद्देश्य के निमित्त है, प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता को गौरवान्वित और महिमान्वित करना है। आइए हम पढ़ें पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। मेरे मित्रों, पहले तो हम वरदान की व्याख्या करेंगे। आत्मा का वरदान क्या है? यह सेवा की क्षमता है, यह एक कार्य है। डॉक्टर लुइस स्पेरी शेफर की परिभाषा है, आत्मिक संदर्भ में वरदान का अर्थ है विश्वासी द्वारा पवित्र आत्मा कोई विशेष काम करता है जिसमें वह विश्वासी को साधन बनाता है। इस परिभाषा में मैं जोड़ना चाहता हूं कि यह काम परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ में किया जाना चाहिए। मित्रों, इसे व्यक्तिगत बनाना है। मैं कुछ नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं परमेश्वर और मनुष्य के किसी काम का नहीं, एक धार्मिकता का स्वभाव सच्चाई है, परंतु उसने मुझे वरदान दिए हैं जिनका मुझे अभ्यास करना आवश्यक है। मेरे विचार में यही मेरे जीवन में पवित्र आत्मा के आविर्भाव की एकमात्र विधि है। मेरे प्रियो, इसका अर्थ आवश्यक नहीं कि यह हो कि प्राकृतिक वरदानों को प्रकट किया जाए। उदाहरण स्वरूप देखेंगे, एक महिला को गाने का वरदान प्राप्त है, उसकी वाणी अति मधुर है, परंतु यदि वह पवित्र आत्मा के सामर्थ में नहीं गाएगी तो परमेश्वर उसका उपयोग नहीं करेगा। मित्रों, यही कारण है कि आज कलीसियाओं में संगीत का स्तर बहुत गिर गया है। संगीतकार सोचते हैं कि प्रतिभा और प्रशिक्षण ही सब कुछ है। वे सोचते हैं कि यदि उनमें यह गुण है तो सब कुछ है और प्रभु उनके बिना कुछ भी नहीं कर सकता। सच तो यह है कि परमेश्वर उसके बिना बहुत कुछ कर सकता है। मैंने अनेक स्थानों में प्रचार किया है और वर्षों के अनुभव से सीख लिया है कि मैं क्या बताऊं कि कब संगीतकार आराधना में सहयोग दे रहा है और कब विघ्न डाल रहा है। मित्रों, मैं फिर कहना चाहता हूं कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा विश्वासियों की प्रतिभा को काम में लेगा यदि वे उसे अनुमति दें तब, परंतु पवित्र आत्मा के नियंत्रण बिना प्रतिभा कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों में प्रतिभा नहीं होती है, उनके विचार में यदि वे गायन मंडली में गाना गाने के योग्य नहीं है तो संडे स्कूल पढ़ाने के योग्य भी नहीं, तो चुपचाप वे बेंच पर बैठे रहते हैं। यह कलीसिया की एक दुर्भाग्यशाली चूक है या गलती है। मेरे मित्रों, इस पद में लिखा है कि प्रत्येक विश्वासी को वरदान प्राप्त है। प्रत्येक विश्वासी को, ध्यान दीजिए, सबके लाभ पहुंचने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। आप स्त्री हो या पुरुष, यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो आपको वरदान प्राप्त है। आप मसीह की देह का एक अंग बनाए गए हैं और आपको उस अंग की भूमिका को निभाना आवश्यक है। सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, अर्थात वरदान का उद्देश्य क्या है? कलीसिया विश्वासियों के देह को उन्नति और विकास करना है। इसका उपयोग स्वार्थ प्रायण न हो अपितु अन्य विश्वासियों की सहायता हेतु इसका उपयोग किया जाए। प्रिय मित्रों, पौलुस कहता है कि आत्मा हर एक विश्वासी को वरदान देता है जो संपूर्ण कलीसिया के निर्माण के निमित्त है। तो आइए हम पढ़ें पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। मेरे प्रियो, ध्यान रखें, बुद्धि का अर्थ यहाँ पर सत्य से है, सत्य की अंतर्दृष्टि। मेरे विचार में बाइबल को समझना हर एक के वश में नहीं है और यही कारण है कि हमें शिक्षकों की आवश्यकता है और पवित्र आत्मा ने हमें शिक्षक दिए हैं। बुद्धि परमेश्वर के वचन में सत्य की अंतर्दृष्टि है, और ज्ञान का अर्थ है परमेश्वर के वचन की गहराई में जाना, उसकी खोजबीन करना। मित्रों, अधिकांश मनुष्यों के पास वचन की गहराई में जाने का समय नहीं होता है कि सोने की खोज करें। एक व्यक्ति जो हमारे रेडियो कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करता है, बड़ी उदारता से कहता है, मैं उन मोतियों के लिए पैसा लगाता हूं जो आप मुझे देते हैं। एक व्यापारी एक कार्यकारी अफसर होने के कारण उसके पास घंटों बाइबल अध्ययन करने का समय नहीं है। मेरे विचार में परमेश्वर उसे यह करने को नहीं कहता है। वह कार्यक्रम को आर्थिक सहयोग देता है और गहराई में जाने का काम मैं उसके लिए करता हूँ। मेरे मित्रों, मेरे विचार में यह मेरा वरदान है, अतः हम दोनों साझे में काम कर रहे हैं। दोनों अपने अपने वरदानों का सही उपयोग करते हैं। यह अत्यधिक व्यवहारिक है जिसे मुझे और आपको हमेशा करना है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय के 9 पद में आगे लिखा है, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। धर्मशास्त्र में लिखा है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है, और यह एक वरदान है। कुछ लोगों के पास विश्वास का वरदान है। मित्रों, इस धरती पर कलीसिया में बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जिनको विश्वास का वरदान था। ऐसे अनेक बार हुआ है कि कोई न कोई कलीसिया का पदाधिकारी मेरे पास आकर के हाथ रख कर के बोलता था, प्रचारक साहब देखिए सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि कई बार हम निराश हो जाते हैं, और ऐसा हुआ भी कि उनके वरदान के कारण हमें साहस मिलता है। उसे विश्वास था, मुझे नहीं। मेरे मित्रों, कई बार हमारे विश्वास के द्वारा दूसरों को आशीषें मिलती है। जी हाँ, विश्वास आत्मा का वरदान है। किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि रोगी पर हाथ रखने के द्वारा चंगाई पाते हैं। मेरे विचार में यह वरदान प्रेरितों और आरंभिक कलीसिया के सदस्यों को दिया गया था। आज इस वरदान की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, हमें अपने शारीरिक समस्याओं के लिए सीधे महान वैद्य के पास ले जाना है। हमें पृथ्वी पर किसी स्त्री या पुरुष के पास जाकर प्रार्थना करने और हाथ रखने के लिए नहीं करना है। कहने का मतलब है कि हमें प्रभु के पास जाना है। अपना रोग सीधा परमेश्वर के पास ले जाएं और निश्चय जाने कि वह आपको चंगाई देगा। मेरे प्रियो, आपको स्मरण होना है कि सेना का सरदार मसीह यीशु के पास आया था और उससे निवेदन किया था कि वह बस मुंह से कह दे और उसका सेवक चंगा हो जाएगा। उसने यीशु से उसके सिर पर हाथ रखने के लिए नहीं कहा था। उसे विश्वास था कि ऐसा विश्वास कि यीशु ने अचंभा किया और वहां कहा है, लुकार्ची सुसमाचार 7 अध्याय उसके 9 पद में, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इसराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। अतः अपना रोग सीधा उस महान वैद्य के पास ले जाएं। यदि आप किसी मानवीय चंगा करने हारे के पास जाते हैं तो आप अपने विश्वास की कमी के कारण इस बात को नहीं देख पाएंगे जो आप देखना चाहते हैं, और शायद अपने विश्वास की कमी आप में प्रकट हो जाएगी। मैं तो यह मानता हूं कि पवित्र आत्मा समय के अनुसार विशेष वरदान देता है। आज किसी के पास वह वरदान नहीं है जो मार्टिन लूथर के पास था। मेरे विचार में पवित्र आत्मा मसीह की देह को वरदान देता है जिससे कि वह अपने युग में क्रियाशील हो और संपूर्ण देह उससे लाभ उठाए। मेरे प्रिय मित्रों, आज हमारी कलीसिया के लिए वरदान आवश्यक है, और वचन में साफ लिखा है कि हमें वरदान दिए गए हैं प्रत्येक विश्वासी को अलग अलग रूप में। सबको एक ही वरदान नहीं चाहिए। कई बार हम लोग सिर्फ एक वरदान की ज्यादा मोल तोल करते हैं और दूसरे वरदान को कम आंकते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें सबको वरदान दिया गया है। मेरे मित्रों, आइए आज हम इन वरदानों पर विचार करें और अपने जीवन को जांचें और देखें कि हमारे अंदर कौन कौन से वरदान हैं। आज मुझे और आपको प्रत्येक को इसे जानने की आवश्यकता है। और आप इसे कैसे जानेंगे? जब तक कि आप परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा की अधीनता में होकर के उसे नहीं ढूंढते हैं। आइए आज हम अपने जीवन में निर्णय लें और परमेश्वर के वचन को पढ़ें, और जिस प्रकार पौलुस कहता है कि हम अपने वरदानों को जान लें। जी हाँ, लिखा है कि सबको सब प्रकार के वरदान दिए गए हैं। एक ही आत्मा है लेकिन वरदान अलग अलग हैं, अर्थात कार्य अलग अलग हैं। किसी को अनुवाद करने का और किसी को बोलने का, किसी को शिक्षा देने का, और इस रीति से हम अन्य वरदानों को भी देखते हैं। मेरे मित्रों, मैं नहीं जानता कि आप किस प्रकार के वरदान से भरपूर हैं। आप पहचाने और प्रभु के सामने आए और निश्चय जाने कि परमेश्वर पिता आपके उस वरदान को अपनी कलीसिया में अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के निकटता में उन वरदानों पर विचार करें जो आज हमने सुना है, पौलुस के द्वारा से कुरिन्थ की कलीसिया के उन वरदानों को जो हमारे जीवन के लिए भी लाभकारी है। प्रार्थना करें और प्रभु से मांगे कि वह हमें और भी अधिक समझ दे कि हम इन वरदानों को अपने जीवन में देखने पाएं। दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए। इस समय जब हमने अपने जीवन में उन वरदानों के विषय में सुना है, विनती है प्रभु कि आप हमारी सहायता करें ताकि हम अपने जीवन में उस अनुभव को देख सकें, उन वरदानों को पहचान सकें। पवित्र आत्मा, हम आपकी सहायता चाहते हैं ताकि हर एक श्रोता भाई बहन अपने जीवन के वरदानों के द्वारा इस्तेमाल होकर आपको महिमा दे सके। पिता परमेश्वर, आज फिर से हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं और बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, फिर से एक बार मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ जो आपने अपना समय इस कार्यक्रम को सुनने में लगाया है। कृपया इसी प्रकार से इस कार्यक्रम को सुनते रहें, अपने मित्रों को भी बताएं और अपने आशीषों को, अपनी गवाहियों को, अपने प्रार्थना निवेदनों को हम तक पहुंचाएं ताकि हम सब मिलकर के उस महान परमेश्वर को धन्य कह सकें। क्योंकि जब कभी मैं आपके पत्रों को पढ़ता हूं, निश्चय ही मुझे बहुत आनंद मिलता है और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आपको आशीष दिया है। आज के इस अध्ययन का समय यहीं खत्म होता है। आप सब अपने आपको प्रभु की निकटता में बनाए रखें, उससे प्रेम करें, उसके वचन में दृढ़ हो। प्रभु आप सब की सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।